जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय द्वैत चंद जय गौर भक्त वृंदा गौरंग महाप्रभु आवर भाव तिथि महोत्सव की गौर पूर्णिमा महोत्सव की हरे कृष्ण। तो रोजबेल सेंटर इस्कान मॉरिशस में आप सबका गौर पूर्णिमा के उत्सव पे स्वागत है। वैकुंठपति प्रभु और सब भक्त यहाँ 7 दिन से गौर पूर्णिमा के उत्सव में सत्संग का आयोजन कर रहे हैं। आज पूर्ण आहुति का दिन है। भगवान श्री कृष्ण पहले समझना चाहिए कौन है, तब समझ में आएगा चैतन्य महाप्रभु कौन है। एक ये बहुत सुंदर सा चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने सुंदर श्लोक लिखा है, सुन लीजिए। पूर्ण भगवान अवतारे ये काले पूर्ण भगवान अवतारे ये काले जिस समय पूर्ण भक्तवान भगवान अवतार लेते हैं और सब अवतार ताए त्यासी मिले, उस वक्त जो भी पहले अवतार भगवान के आ चुके हैं वो सब आकर उसमें मिलते हैं। ये समझ रहे हैं, ये बात समझ में आ रही है। इसका अर्थ ये है कि जब अवतार वैसे आते हैं तो पूर्ण भगवान नहीं आते हैं, भगवान का विस्तार आता है, अंश आता है, आवेश आता है, शक्ति आवेश आता है, पूर्ण भगवान नहीं आते। जैसे काम आपके देश में पड़ता है तो कोई मंत्री आता है, कोई कमिश्नर आ जाएगा, कोई डायरेक्टर आ जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री सब जगह तो नहीं आते, हाँ प्राइम मिनिस्टर सब जगह तो नहीं आएगा ना, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर आता है तो सभी उसके साथ आते हैं ना, तब सभी उसके साथ आ जाते हैं। तो पूर्ण भगवान जब आता है तो सारे अवतार उसमें आके मिल जाते हैं। कौन कौन से मिलते हैं, तब कहते हैं नारायण चतुर्व्यूह, नारायण चतुर्व्यूह मत्स्यादि अवतार। जो भी अवतार भगवान नारायण से आते हैं, विष्णु से आते हैं, चतुर्व्यूह में 4 नाम आते हैं, वसुदेव संकृष्ण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, ये चतुर्व्यूह इसको बोलते हैं। जितने अवतार आते हैं इस संसार में, भगवान श्री कृष्ण अवतारी, उससे पहले निकलते हैं बलराम जी, बलराम जी से निकलते हैं संकृष्ण, संकृष्ण से 3 विष्णु प्रकट होते हैं जो ये सृष्टि का काम करते हैं, जिसमें हम रह रहे हैं। ये सृष्टि कौन बनाता है, ये भगवान विष्णु का कार्य है। तो ये चारों पांचों सब जो है वो मत्स्य आदि अवतार, ये सब प्रविष्ट करते हैं जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं। सभी आसे कृष्ण अंगे है अवतीर्ण, ऐसे अवतार कृष्ण भगवान पूर्ण। ये सारे जितने अवतार है, 10 अवतारों का नाम तो आप सबने सुना है ना, 10 अवतारों का कच्छ मच्छ अवतार, हाँ कच्छ मच्छ, फिर परशुराम, नरसिंह, वामन, ये सब नाम सुने ना, ये सारे अवतार आकर भगवान श्री कृष्ण में प्रवेश करते हैं, मिल जाते हैं जब भगवान श्री कृष्ण पूर्ण अवतार लेते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि जब जरूरत पड़ती है तो भगवान खीर सागर में जो विष्णु सोते हैं वही अवतार लेते हैं। इस संसार में अवतार कौन लेता है? खीर सागर में शयन करने वाले विष्णु अवतार लेते हैं। खीर सागर में शयन करने वाले विष्णु अवतार लेते हैं, इसलिए सारे अवतार भगवान विष्णु से आते हैं। कौन से विष्णु से? खीर सागर में शयन करने वाले विष्णु। इसलिए आप पढ़ते हैं हमेशा, धरती के ऊपर भार बढ़ जाता है, धरती ब्रह्मा जी के पास जाती है, ब्रह्मा जी शंकर आदि देवता को लेकर खीर सागर पे जाते हैं, और खीर सागर में खीरो दक्षाई विष्णु, खीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु को प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण को अवतार लेना होता है ब्रह्मा के एक दिन में एक बार, तब सारे अवतार भगवान श्री कृष्ण के अंदर आके मिल जाते हैं। तो इसलिए जब कोई कहे कि अवतार सब भगवान विष्णु से आते हैं तो मानना चाहिए हां आते हैं, लेकिन श्री कृष्ण विष्णु से आता है, अवतार नहीं है। श्री कृष्ण पूर्ण भगवान अवतारी है, ये अंतर है, ये साधारण लोगों को मालूम नहीं है। ये लोगों को मालूम नहीं है कि कृष्ण अवतारी है जिससे सब अवतार निकलते हैं, लेकिन सब अवतार वैसे विष्णु से आते हैं। तो कृष्ण पूर्ण भगवान, कृष्ण क्या है? पूर्ण भगवान। पूर्ण मतलब कंप्लीट भगवान है। तो जब कृष्ण आता है तब उसमें कौन क्या काम करता है? तब कहते हैं अतेव विष्णु तखन कृष्णेर शरीरे, उस समय कृष्ण के शरीर में विष्णु, विष्णु द्वारा करे कृष्ण असुर संहारे, जो असुरों को मारने का काम है वो कृष्ण विष्णु के द्वारा करता है। अवतार कौन लेता है? कृष्ण। उसके अंदर प्रवेश किया विष्णु ने, अब असुरों को जो संहार करना है, ये सब श्लोक आता है ना आपको, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्योत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्, और फिर परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतं। तो दुष्टों को नाश कौन करता है? विष्णु, कृष्ण नहीं। ना क्या लिखा है बड़ा देखो, ये समझ में आना चाहिए। जब विष्णु उस समय जब कृष्ण के अंदर प्रवेश होकर आता है तो विष्णु द्वारा करे, विष्णु द्वारा करे कृष्ण असुर संहार, असुरों को संहार विष्णु के द्वारा करते हैं। आनुसंगेन कर्म एय असुर मारण, ये लागे अवतार कहीं से मूल कारण। इसका अर्थ है कि असुरों को मारना मूल उद्देश्य भगवान के अवतार का नहीं है। अवतारों में कृष्ण जब आते हैं तो असुरों को मारने के लिए नहीं आते, वो तो विष्णु का काम है, तो फिर क्यों आते हैं? कविराज गोस्वामी कहते हैं, अब मैं बताता हूं कि कृष्ण क्यों आते हैं। असुरों को मारने के लिए नहीं आते हैं तो क्यों आते हैं? प्रेम रस, प्रेम रस निर्यास करीते आस वासदन राग मार्ग भक्ति लोके करीते प्रचारण। क्यों आते हैं कृष्ण? असुर मारने के लिए नहीं आते। प्रेम रस, भगवान और भक्तों के बीच में जो प्रेम है, उस प्रेम के रस का आस्वादन करने के लिए, टू रेलिश द ट्रांसेंडेंटल मेलोस, उस रस का रस आस्वादन करने के लिए कौन से मार्ग वाला रस? दो मार्ग है प्रेम रस का। भगवान और भक्तों के बीच में जो प्रेम का रस है वो दो रास्ते हैं, एक को कहते हैं वैधि मार्ग या विधि मार्ग, एक को कहते हैं राग मार्ग। विधि मार्ग का अर्थ है नेम, राग मार्ग का अर्थ है स्पॉन्टेनियस, अपने आप। जैसे वृंदावन में रहने वाले सब लोग, आज भी आप जाओ वृंदावन में तो रिक्शे वाला मुसलमान भी राधे राधे बोलेगा, काम करने वाला राधे राधे बोलेगा, कोई चीज मांगनी होगी तो राधे राधे बोलेगा। इसको बोलते हैं अपने आप भगवान का नाम मुख से निकलता है। अब हम आपको जबरदस्ती कहते हैं बोलिए हरे कृष्णा, अभी भी नहीं बोलते हैं। देखो ए इसको बोलते हैं कि बोलने से भी लोग नहीं बोलते हैं, और वहां कृष्ण के जो भक्त हैं सारा दिन अपने आप उनके मुख से केवल कृष्ण का नाम निकलता है, राधे राधे निकलता रहता है। ये अंतर है। तो कृष्ण क्यों अवतार लेते हैं? राग मार्गे भक्ति लोगे करीते प्रचारण, लोगों को राग मार्ग से भक्ति सिखाने और प्रचार करने के लिए कृष्ण आते हैं। तो एक बात आप ठीक तरह समझ लीजिए कि कृष्ण का अवतार इस संसार में असुरों को मारने के लिए नहीं होता है। कृष्ण का अवतार इस संसार में प्रेम भक्ति के प्रचार के लिए होता है। बाकी सारे अवतार जो असुरों को मारने का काम कृष्ण करता है वो विष्णु जो कृष्ण के अंदर है उसके द्वारा होता है। जैसे कभी आपने ऐसे भगवान श्री कृष्ण के पहला असुर कौन मारा था भगवान श्री कृष्ण ने? पूतना। 6 दिन के छोटे भगवान थे और बकासुर की बहन, अघासुर की बहन पूतना सुंदर नारी का रूप धारण करके आई थी यशोदा के घर में। भगवान ने पूतना को देखा, आंखें बंद कर दी और पूतना ने जबरदस्ती कृष्ण को उठा के अपना स्तन उसके मुंह में दे दिया पिलाने के लिए। भगवान ने आंखें बंद कर दी। क्यों आंखें बंद कर दी? उधर लिखा है कि भगवान आंखें बंद करके कहते कि मारना काम मेरा नहीं है, विष पीना मेरा काम नहीं है, विष पीने के लिए भगवान शंकर का काम है, नीलकंठ विष तो वो पीता है, विष कौन पीता है? नीलकंठ। आंखें बंद करके भगवान विष्णु को बुलाया श्री कृष्ण ने कि आप विष पी लो, मैं तो दूध पीने के लिए आया हूं, मक्खन खाऊंगा वृंदावन, विष मैं नहीं पीऊंगा। तो आंखें बंद करके विष्णु को बुला, विष्णु शंकर जी को बुलाया विष पीने के लिए, बोला इसको मारेगा कौन? संहार करना आपका काम है शंकर जी, मारना आपका काम है, तो इसको मारो, मैं नहीं मारूंगा, मैं तो इसको मां का स्थान दे दूंगा क्योंकि मेरे को दूध पिला रही है। तो इसलिए भागवत में लिखा है कि विष काल कूट लगाकर पूतना जो कृष्ण को मारने के लिए आई थी, कृष्ण ने उसको मां का स्थान दे दिया। इससे ज्यादा कौन दयालु दुनिया में होगा? मारने वाले को भी मां बोल दे और मां की जगह दे दिया, अपने अपने धाम में स्थान दे दिया। चेतना महाप्रभु के भक्तों में, चेतना महाप्रभु से पहले अवतार लेने से पहले चेतना महाप्रभु ने बहुत से भक्तों को भेजा था, उनमें एक भक्त था उसका नाम था पुंडरिक विद्यानिधि। आप नाम सुना है पुंडरिक विद्यानिधि का? पुंडरिक विद्यानिधि चेतना महाप्रभु के परम भक्तों में, वरिष्ठ भक्तों में, बड़े भक्तों में एक थे। एक बार गदाधर पंडित को, गदाधर पंडित को जानते हैं? यहां देखिए एक सुंदर चित्र पड़ा है, इसको देख लीजिए। ऊपर राधा कृष्ण है, बीच में चेतना महाप्रभु है और पंचतत्व है पूरे। पंचतत्व में आप देखिए चेतना महाप्रभु के सीधे हाथ की तरफ में, राइट साइड में नित्यानंद प्रभु है। हाँ, बिल्लू 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 धोती पहनी हुई है क्या? हाँ, और बिल्लू ये, हाँ ठीक है नीला। उनकी राइट साइड में दाढ़ी से अद्वैत आचार्य हैं, ये भगवान विष्णु के अवतार हैं, और नित्यानंद बलराम जी है, ये तीनों भगवान श्री कृष्ण के विस्तार हैं। चेतना महाप्रभु कृष्ण, नित्यानंद बलराम, अद्वैत आचार्य, विष्णु भी उनके अंदर है, महाविष्णु है और सदाशिव दोनों उसके अंदर है। महाविष्णु और सदाशिव कौन है? तीसरा नंबर देख लो। अब आओ लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे जो भक्त है उनका नाम है गदाधर पंडित। आप जाते हैं सीताराम का मंदिर, यहां राधा राधा कृष्ण का मंदिर में कृष्ण के किस तरफ होती है, राधा या सीता? हाँ, ऑन विच साइड ऑफ कृष्ण, राधा या सीता का होता है? लेफ्ट में। अरे कृष्ण को राधा सीता याद नहीं आया, आपने शादी की थी, आपको किस तरफ बिठाया था पति के? हाँ, वाम भाग स्थितो, लेफ्ट साइड में बिठाते हैं। पत्नी तब होती है जब तक राइट साइड में, तब तक पत्नी नहीं होती। तीन चक्कर तक पत्नी उस तरफ बैठती है राइट में, और आखिरी फेरे में उसको लेफ्ट साइड में बिठाते हैं, बस फिर हो गया पक्का। ऐसे होता है कि नहीं होता आपके पास? हाँ, लेफ्ट साइड में भगवान की शक्ति होती है। लेफ्ट साइड में गदाधर कौन है? राधा रानी। राधा भगवान की कौन सी शक्ति है? अंतर अंग शक्ति, अहलादिनी शक्ति राधा। ये राधा का स्वरूप कौन है? गदाधर। और गदाधर के लेफ्ट में कौन है? देखो, एक है सिर मुंडाया हुआ, हाँ, सर के ऊपर बाल नहीं है ना, ये है भक्त, ये श्रीवास आचार्य। श्रीवास आचार्य ये क्या है? ये भगवान की शक्ति है। कौन सी शक्ति है? राधा रानी तो वो अंतरंग शक्ति है, ये कौन सी शक्ति है? जीव शक्ति। कौन सी शक्ति? जीव शक्ति, तटस्थ शक्ति, जीव शक्ति। जैसे हम जीव हैं, ऐसे ही भगवान का एक परम भक्त है और ये नारद का अवतार है। तो एक बार मुकुंद दत्त चैतन्य महाप्रभु के लीला में बहुत मधुर गाते थे मुकुंद दत्त। उनका कंठ इतना सुंदर था, उनको उसका गाना चैतन्य महाप्रभु को बहुत पसंद था। एक बार मुकुंद ने कहा गदाधर, गदाधर चलो तुमको एक बहुत बड़े भक्त से मिला के आता हूं। ले गए पुंडरिक विद्यानिधि के घर। पुंडरिक विद्यानिधि को देखा तो राजाओं की तरह रेशमी कपड़े पहने हुए पान चबा रहे हैं और सेंट इत्र लगाया हुआ है। गदाधर के मन में आया, ये कहां से भगत आया? ये भक्त तो नहीं लगता, ये तो बड़ा विषयी कोई लग रहा है, हाँ, एंजॉयमेंट कर रहा है। मुकुंद समझ गया कि गदाधर के मन में शंका है, इसलिए मुकुंदा ने यह श्लोक बोला। कौन सा श्लोक? अभी हमने आपको कहा था, बकासुर की बहन पूतना अपने स्तन के ऊपर कालकूट विष लगा के आई, लेकिन क्या कृष्ण को स्तनपान कराया, कृष्ण ने उसको मां का स्थान दे दिया, मात्र धात्र गति दे दी। ये श्लोक सुनकर पुंडरिक विद्यानिधि अपने स्थान से उठ के नीचे गिरे, लौटने लगे। इतना कृष्ण प्रेम का भाव उनमें आया, लौटने लगे। यहां से कहां से टेबल गई, कहां कुर्सी गई, कहां फर्नीचर गया। 10 आदमी उसको पकड़े तो प्रेम आवेश में 10 आदमी ऐसे हवा में उड़ गए सामान के साथ, कोई पकड़ नहीं पाया। और 3-4 घंटे वो ऐसे धरती पे लौट के कृष्ण 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 भगवान का नाम ले रहे थे। ये देखकर गदाधर पंडित को बहुत आश्चर्य। कौन था पुंडरिक विद्यानिधि? कौन था? कृष्ण लीला में पुंडरिक विद्यानिधि वृषभानु राधा रानी का पिता था। वो वृषभानु राधा रानी का पिता था। अब गदाधर पंडित ने कहा, तुमने बड़ी कृपा की मुकुंद मेरे ऊपर, तुम ये अगर कृष्ण के दयामय चरित्र का गान नहीं करते तो मैं तो पुंडरिक विद्यानिधि को पहचान ही नहीं सकता। अब मुझसे अपराध तो हो गया एक वैष्णव को, अभी तक मैंने दीक्षा तो ली नहीं है, गुरु किया नहीं है, और गुरु करने के बगैर भगवान की भक्ति मिलेगी नहीं, इसलिए क्योंकि मेरे से इनका अपराध हुआ है, इसलिए मैं अभी पुंडरिक विद्यानिधि को अपना गुरु बनाना चाहता हूं। जिससे आपका कभी अपराध हो जाए उसके चरण में जाकर उसकी सेवा करनी चाहिए। गदाधर पंडित ने चैतन्य महाप्रभु से जाके ये पूछा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, बहुत अच्छा, आपको मुश्किल से कभी इस धरती के ऊपर पुंडरिक विद्यानिधि जैसा भक्त मिलेगा। और पुंडरिक विद्यानिधि को जाके कहा, मुकुंदा बोलते हैं पुंडरिक, गदाधर आपको गुरु बनाना चाहता है, आप इनको शिष्य स्वीकार कीजिए। और पुंडरीक विद्यादिदि कहते हैं, बड़े भाग्यशाली कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसको माधव मिश्रा का बेटा ये गदाधर जैसा शिष्य मिलता है। संसार में ऐसा शिष्य मिलना बहुत मुश्किल है, ये मेरे भाग्य है कि मेरे को गदाधर जैसा शिष्य मिल रहा है। शिष्य और पुत्र समान होते हैं, बेटा और शिष्य बराबर होते हैं गुरु के लिए। तो वृषभानु की राधिका वहां बेटी थी और यहां गदाधर शिष्य बन गया, तो दोनों समान हो गए। तो हम बात कर रहे थे गदाधर भगवान की शक्ति है, श्री कृष्ण की शक्ति है, अंतरंग शक्ति है। तो ये बात कहां से बीच में आ गई थी कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं केवल एक ही काम करने के लिए, क्या? अपने भक्तों के साथ प्रेम के रस का रसास्वादन करने के लिए। असुर मारना कृष्ण का काम नहीं है, इसलिए कृष्ण के अवतार में केवल भगवान श्री कृष्ण नंद नंदन, यशोना नंदन, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण वृंदावन के अंदर अपने भक्तों के साथ प्रेम का व्यवहार किया। 11 साल की आयु में कृष्ण को जब मथुरा ले जाया गया अक्रूर के द्वारा और गोपियां रो रही थी, उस वक्त वसुदेव कृष्ण, देवकी नंदन कृष्ण, मथुरानाथ कृष्ण, द्वारकाधीश कृष्ण वो चला गया, लेकिन नंद नंदन कृष्ण वृंदावन में ही रहा, वो नहीं गया। और मथुरा में जाके कंस को मारा, जरासंध से लड़ाई की, अन्य असुर मारा, ये सब विष्णु जो कृष्ण में थे उनके द्वारा हुआ, ये देवकी नंदन कृष्ण के द्वारा हुआ, क्योंकि देवकी और कृष्ण के सामने चार हाथों वाले विष्णु के रूप में कृष्ण प्रकट हुए थे, यही भागवत में लिखा है। भागवत में आप देखेंगे तो कंस की जेल में देवकी और वसुदेव के सामने चार हाथ के रूप में कृष्ण प्रकट हुए थे, ये है वसुदेव कृष्ण जो विष्णु है। लेकिन नंद नंदन के घर में दो हाथ वाले श्याम सुंदर प्रकट हुए थे और वसुदेव का कृष्ण उसके अंदर मिलके एक हो गया था। तो ये बात किसी को मालूम नहीं है। अब श्री कृष्ण भगवान दो काम करने के लिए आते हैं। देखो आप देखिए अवतार लेते हैं तो ये दो काम जब कृष्ण करते हैं, कौन है कृष्ण? रसिक शेखर कृष्ण परम करुणा। रसिक शेखर मतलब शेखर कहते हैं शिखर, मंदिर के ऊपर सबसे बड़ा होता है ना, उसको शिखर बोलते हैं, जिसके ऊपर ध्वजा लगाते हैं मंद, उसको बोलते हैं शिखर। तो रस को पीने वाला सबसे ऊंच कोटि का कृष्ण है। रसिक शेखर कृष्ण परम करुणा बड़ा दयालु है। ए दुई हेतु हैते इच्छा र उद्गम, केवल इन दो कामों के लिए इस दुनिया में आते हैं। क्या काम करने के लिए? भक्तों के साथ प्रेम का रस आस्वादन और राग भक्ति सिखाना। कृष्ण के अवतार के ये दो काम है सिर्फ। असुरों को मारना कृष्ण के अवतार का उद्देश्य नहीं है, विष्णु का काम है। भक्तों के साथ प्रेम के रस का रसास्वादन करना और राग मार्ग की भक्ति सिखाना, स्पॉन्टेनियस लव फॉर कृष्ण। अब ये हुई कृष्ण की बात, अब कृष्ण आगे क्या सोचते हैं। जो ऐसे भगवान की भक्ति करते हैं ना, जो कृष्ण सिखाते हैं राग मार्ग की, वो कैसे होते हैं? ब्रजेर निर्मल राग सुनी भक्त गण। वृंदावन में भक्त कैसे भक्ति करते हैं कृष्ण की? राग मार्गे भजे ये न छाड़ी धर्म कर्म। धर्म कर्म, दुनिया में जो लोग जाते हैं वो धर्म कर्म छोड़ देते हैं, अपने आप सिर्फ कृष्ण के प्रेम। अब गोपियों ने कैसे की भक्ति, गोपियों ने कृष्ण की कैसे भक्ति की है? राग मार्ग से दुनिया का धर्म कर्म सब छोड़ दिया, सब धर्म कर्म छोड़ के गोपियां जाती थी ना भगवान के पास, और भगवान कहते हैं जो लोग मेरी पूजा करने के लिए आए और माथा ऐसे टेके कुछ प्रसाद रखे, भगवान आप बहुत महान हो, बोला उनसे मुझे आनंद नहीं आता, मुझे आनंद नहीं आता उससे। आपको किससे आनंद आता है? जो भक्त मुझे बोले उठो चलो मेरे साथ, खाया कुछ नहीं है भूखा मर जाएगा, ऐसा कोई मां की तरह कान पकड़े यशोदा की तरह मेरा, वो भक्त मुझे अच्छा लगता है। ऐश्वर्य भक्ति करने से मुझे अच्छा नहीं लगता। भगवान श्री कृष्ण को आरती घंटी बजाना ये अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता मतलब ये पूजा की विधि ये करते रहो। इसलिए हम जो मंदिर में पूजा करते हैं ना, ये लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। कौन सी पद्धति से पूजा करते हैं? लक्ष्मी नारायण की पद्धति से पूजा करते हैं। एव और रिवरेंस के साथ पूजा करते हैं, ऐश्वर्यमयी पूजा करते हैं, छप्पन भोग लगाते हैं, राज भोग लगाते हैं, लेकिन वृंदावन के अंदर, वृंदावन के अंदर झोली जैसे हमारी माला की है ना, जैसे माला है ना आपकी झोली में, लोकनाथ गोस्वामी भगवान कृष्ण को अपनी झोली में टांग के घूमते थे, कहीं जाना होता तो पेड़ में टांग देते थे झोली, और आटा आता था थोड़े गोला बना के बोलते थे तुम भी खाओ हम भी खाएंगे, बस हो गया। इसको बोलते हैं भगवान से राग मार्ग की भक्ति। आपने सुना होगा मदन मोहन, भगवान मदन मोहन, सनातन गोस्वामी जब उनकी पूजा करते थे, पहले मदन मोहन की पूजा होती थी मथुरा में एक चतुर्वेदी ब्राह्मण के घर में, और सनातन गोस्वामी वहां भिक्षा लेने गए, मदन मोहन को देखा बड़ा पसंद आया, बोला इसकी पूजा मैं करता तो अच्छा, मांगा, मां ने बोला नहीं दूंगी। रात को सो गई, मदन मोहन ने कहा अब मैं आपकी पूजा से संतुष्ट हो गया, अब मेरे को बाबा जी को दे दो। सनातन गोस्वामी के पास आ गए मदन मोहन ठाकुर जी, वृंदावन में पहला मंदिर बना है मदन मोहन का। जब वृंदावन में जब मदन मोहन जी आ गए तो क्या है, अब सनातन गोस्वामी के पास है तो कुछ नहीं, आटा ले आए जमुना के पानी के अंदर उसको घोले और फिर आग जला के उसके अंदर आटा डाल दें, आटा पक जाए भगवान को भोग लगाए। रात को सोए हुए सनातन को पकड़ के मदन मोहन कहता है थोड़ा नमक तो डालो, ये आटा फीका पानी वाला मेरे गले में नीचे नहीं उतरता है। क्या आटा पानी में घोल के मेरे गले में नहीं उतरता है, कुछ नमक तो डालो। सनातन गोस्वामी कहता है आज नमक मांगेगा, कल कहेगा चीनी लेकर आओ, फिर कहेगा दूध लेकर आओ, मैं कहां से लाऊं, खाना है तो खाओ नहीं तो आराम करो। ये है राग भक्ति। हरे कृष्णा। ब्रजेश्वरी, ब्रजरानी, हरे कृष्णा, बात ये कर रहे हैं कि कृष्ण जब अवतार लेता है तो सब अवतार उसमें प्रविष्ट हो जाते हैं। असुरों को मारने का काम कृष्ण नहीं करते हैं, उनके अंदर विष्णु होता है वो करता है। तो कृष्ण क्या करते हैं, केवल अपने भक्तों के साथ प्रेम रस का व्यवहार करते हैं और राग मार्ग की भक्ति सिखाते हैं। अब ये कह रहे थे राग मार्ग की भक्ति कैसी होती है, हमारे मंदिरों में पूजा होती है ऐश्वर्य की, लक्ष्मी नारायण की पूजा जैसे होती है ये भाव की पूजा होती है मंदिरों में, लेकिन गोस्वामियों ने भगवान की पूजा राग मार्ग की कैसे की, सनातन गोस्वामी का उदाहरण दे रहे थे। मदन मोहन को आटा और पानी घोल के और सेक के गोबर, सूखे गोबर को जला के उसमें सेक कर वो बाटी, भगवान भोग लगाओ, पानी जमुना का भर के, बोला नहीं जाता गले में, नमक भी नहीं है घी भी नहीं है कैसे खाऊं। अब आपको अगर खाना है ऐसा प्रबंध करो अपना, मेरे पास नहीं है, ऐसे बोलता है सनातन गोस्वामी। तब अचानक एक बहुत बड़ा व्यापारी बिजनेसमैन जहाज भर के पानी का जमुना में ले जा रहा था आगरा बेचने के लिए दिल्ली से, जहाज अटक गया उस जगह पे, रात हो गई, चोरों का डर लगा, ऊपर एक बत्ती छोड़ी जल रही थी लालटीन, जहाज का मालिक ऊपर गया, सनातन गोस्वामी ध्यान में भगवान के नाम जप रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जाके प्रणाम किया। महाराज महाराज हमारी सहायता करो, महाराज हमारी सहायता करो, हमारा जहाज पानी में अटक गया है। सनातन गोस्वामी कहते हैं भगवान को जाके बोलो, वो देखो गोपाल को बोलो, मदन को बोलो, मदन मोहन सेवा करेगा, आपका दुख दूर करेगा। उसने प्रार्थना की, तब तक एक हवा का झोंका आया, पानी में चक्कर आया और वहां से जहाज निकल गया। जहाज को लेके गया, बहुत पैसा धन कमाया, वापस आया, बोला महाराज आपने हमारी रक्षा कर दी, हमारा जहाज बच गया, अब हम आपके इस ठाकुर जी की सेवा करेंगे, बड़ा मंदिर बनाएंगे। अब वो पैसा लेकर आया, उसने बड़ा मदन मोहन का मंदिर बनाया, लाल पत्थर का। अब तो व्यवस्था हो गई, मदन मोहन को 56 भोग राजभोग लगने की। सनातन गोस्वामी ने कहा अब आप माल खाओ, अब आप राजभोग खाओ, ये आपका सेवाधारी आपकी सेवा करते, हम जाते हैं पेड़ के नीचे रहेंगे, बस हो गया। मंदिर बनाया सनातन गोस्वामी ने, अंदर रह के सुख नहीं लिया, अंदर रह के सुख नहीं लिया, फिर पेड़ के नीचे जाके रहे और पुजारियों को मंदिर की सेवा दे दी, आप इसकी सेवा करो। अब इसको बोलते हैं राग मारंग की भक्ति, स्पॉन्टेनियस लव फॉर कृष्णा, स्पॉन्टेनियस लव फॉर कृष्णा। कृष्ण कहते हैं मुझे जब कोई ऐसे प्रेम करता है, अपना मुझे समझता है, कोई मित्र होता है समझता है कृष्ण मेरा मित्र है, मैं उसका हाथ पकड़ के अपने साथ ले जा सकता हूं, मेरा बहुत दिल का मित्र है। कौन सा मित्र दिल का कैसा है, बोला चोरी करने भी साथ चले जो, चोरी करने जो कृष्ण के साथ जाते थे वो कृष्ण को अच्छे मित्र लगते थे। जो कहते नहीं नहीं भगवान हम चोरी नहीं करेंगे, हमको पाप लगेगा, बोला तेरा बाप मर जा यहां से, तेरे को पाप लगेगा तो भाग यहां से, तुम मेरे साथ नहीं चलेगा, हम तो ऐसे नहीं जाएंगे ना। तो धर्म कर्म सब छाड़ी लिखा है, धर्म कर्म छाड़ी, छोड़ के धर्म कर्म ब्रज की भक्ति होती है ये, इसको बोलते हैं माधुर्य, इसको बोलते हैं राग राग भक्ति। कोई भक्त कृष्ण को सांदीपनि मुनि आगे कृष्ण को प्रणाम नहीं करता था, खड़ा होता था, कृष्ण उठा के माला डालता था, सांदीप वो गुरु है, वो बोलता है मेरा शिष्य है। नंद बाबा कहता इधर आओ, ए कृष्ण इधर आओ, जा मेरा चप्पल उठा के आओ। अब कृष्ण चप्पल सर के ऊपर उठा के ऐसे आता है, छोटा सा टुबक, इसको कृष्ण को ये अच्छा लगता है। कृष्ण कहते हैं मेरे भक्त मुझे प्रेम से वश में कर लेते हैं। तो ये जो बात है, कृष्ण कहता है मैं इसीलिए अवतार लेता हूं, असुरों को मारने के लिए नहीं, धर्म स्थापन करने के लिए, ये मेरा काम नहीं है, ये तो विष्णु का काम है, वो तो करता ही रहता है, युग युग में आता रहता है, लेकिन मैं जब आता हूं तो केवल ये दो काम ही सिखाता हूं। और कृष्ण जब ये दो काम सिखा रहे थे, इससे आगे आया है कौन सा प्रेम का रस है ये भी देख लीजिए। निज निज भाव सभी श्रेष्ठ करे माने, निज भावे करे कृष्ण सुख आस्वादने। हर एक भक्ति अपने अपने भाव में कृष्ण के साथ प्रेम करता है। जो दास है वो अपना मालिक समझ के उसकी सेवा करता है, जो मित्र है जो सखा है वो सखा भाव से करता है, जो माता पिता है वो वात्सल्य भाव से करते हैं, और सबसे ऊपर सब रस हैते श्रृंगार अधिक माधुरी। लेकिन इन सब रसों में जो श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस का अर्थ होता है माधुर्य रस, जिसमें गोपियां कृष्ण से प्रेम करती हैं, वो सबसे ऊपर का रस है। श्रृंगार रस अधिक माधुरी, उसमें मिठास बहुत ज्यादा है, अधिक वो मीठा है। अतएव माधुर रस कहे तारम नाम, उसको मधुरी रस कहते हैं। तो हमको तो मालूम है ना, दास रस, सख्य रस, वात्सल रस और माधुरी रस, माधुर रस सबसे ऊपर है। लेकिन माधुर्य रस में भी दो विभाग हैं, स्वकीय और परकीय, स्वकीय और परकीय। ये कृष्ण के संबंध में बातें हैं और कृष्ण प्रेम की बातें हैं, संसार के स्त्री पुरुष की बातें मत समझना इसको। ये भौतिक जगत की बातें नहीं है। स्वकीय प्रेम का मतलब है स्त्री और पुरुष के विवाह के बाद आपस में प्रेम का रस, जैसे कृष्ण द्वारका में रुक्मणी सत्यभामा आदि के साथ रहते थे। परकीय का अर्थ है गोपियां और राजा रानी के साथ जो कृष्ण का व्यवहार था वृंदावन में। परकीय रस और कहीं नहीं है सवाए वृंदावन के, परकीय रस वृंदावन के अलावा और कहीं नहीं है। केवल परकीय रस चैतन्य चरितमृत में कहा लिखा गया है, परकीय रस जो है वो केवल और केवल वृंदावन में और कहीं नहीं है। अब राधा रानी का एक दृष्टि से उनका छाया रूप का विवाह कर दिया एक गोप से, उसका नाम था अभिमन्यु, अभिमन्यु नाम का एक गोप था, उसके साथ छाया राधा का विवाह कर दिया दुनिया की दृष्टि से। उसकी एक सास थी जटिला और कुटिला उसकी ननंद थी, ये दोनों उसको कृष्ण से मिलने को जाने नहीं देती थी और जितना रोकती थी उतना कृष्ण का प्रेम बढ़ता था। और फिर कृष्ण कोयल की आवाज में कू कू करते थे तो एक कोकिला वन है, यहां राजा रानी की ससुराल है सामने कोकिला वन है, राजा रानी कहती थी बहुत सुंदर कोयल बोल रही है उसका आवाज सुनने जाना है, ललिता सखी चलो सुनने चाहते हैं, उधर जाते थे तो कृष्ण से जाके मिलते थे। तो ये जो परकीय रस है ये वृंदावन के अलावा और कहीं नहीं दिखने को मिलता है। इस रस का रसास्वादन केवल ब्रज में होता है और केवल कृष्ण करता है और केवल गोपियां और राधा रानी इस रस की गुरु है और किसी को इस रस का पता नहीं। लेकिन ये रस क्या है? प्रेम का है, काम का नहीं है। सुबह श्री श्री राधा गोलोक आनंद में मंदिर में इस बात के ऊपर बहुत चर्चा हुई थी, राधा और कृष्ण है कौन? लिखा है राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, आत्मा एक है शरीर दो हो गए। तो राधा और कृष्ण का प्रेम तो अपने आप से प्रेम करना है ना, इसको कभी कभी एक शब्द बोलते हैं, इसको ऐसे समझो आप अपनी शक्ल आईने में देखते हो ना, तो अपनी शक्ल आईने में देखते हो उसके सामने आपको कोई शर्माती है क्या? आईने के सामने हमारे को अपनी शक्ल देखने में वस्त्र पहने हुए नहीं पहने कोई शर्म नहीं आती, आती है क्या? नहीं आती है ना, कोई नहीं है अपने को आईने में। तो ये कृष्ण के लिए राधा आईना है, मिरर है, लिखा है मिरर। कृष्ण क्या है? राधिका क्या है? मिरर है, उसमें कृष्ण अपने आप को देखता है और उसका आनंद लेता है। तो इसमें कोई दुनिया, ये तो सभी मिरर के सामने रोज खड़े होते हो आप लोग, इसमें कोई परेशानी की बात है क्या? नेचुरल है कि नहीं? हाँ, मिरर के अंदर हम किसी को कैसे खड़े होते हैं कुछ ये परवाह नहीं है। तो इसी को बोलते हैं प्रण्य विकार, आईने में अपने आप को देख रहे जैसे आदमी, तो राधिका के हृदय के आईने में कृष्ण अपने आप को देखता है। तो कोई उसमें, तो इस प्रेम में कोई संसार की गंध तो है नहीं, अपने आप से तो प्रेम कर रहा है और किसी से तो कर नहीं रहा है, अपने आप से ही तो प्रेम कर रहा है ना, ये बहुत बड़ी बात है। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, केवल शरीर दो दिखते हैं, आत्मा एक है। अन्यो अन्य विलास रस आस्वादन करी, हर एक दूसरे से रस का आस्वादन कर रहा है। वो ऐसे है कि आईने में आप ऐसे हाथ उठाओगे तो कान में तो वो भी हाथ उठाएगा, आप सर को लगाए तो वो भी सर को लगाएगा। तो इनका आपस में प्रेम ऐसे है कि अपने आप से प्रेम कर रहा है। से दुई एक एबे चैतन्य गोसाई, वो दोनों मिलके एक हो गए, वो दोनों शरीर आज मिलके एक हो गए हैं। क्या बन गया? चैतन्य गोसाई रस आस्वादिते दोहूं आयते एक ठाई, एक ही जगह पे अभी दोनों इकट्ठे हो गए हैं, एक ही जगह पे दोनों इकट्ठे हो गए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु एक ही बोतल में अमृत भी है और विष भी है। राधा का प्रेम का विष कभी कभी जुदाई का विश्व उसमें होता है तो हर वक्त महाप्रभु की आंखों से आंसू की धाराएं बहती रहती हैं। और कभी कभी कृष्ण 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 मिल गया मिल गया मिल गया तो फिर आनंद में पुलकित होकर हंसने लगते हैं। दोनों चीजें एक के अंदर हैं। तो ये जो राधा कृष्ण दोबारा मिलके एक हो गए उसको कहते हैं चैतन्य गोसाई, उसको चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा। इथी लागे आगे करी तार विवरण, यथा हैते है गौरेर महिमा कथन। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं, कविराज गोस्वामी कहते हैं कि राधा और कृष्ण का प्रेम स्त्री और पुरुष का प्रेम नहीं है, कृष्ण का अपने आप से प्रेम करना है। अपने शरीर से कृष्ण ने राधा को प्रकट किया और फिर उसके साथ प्रेम किया और फिर उसको अपने शरीर में वापस मिला लिया, कोई अलग नहीं है। राधिका है न कृष्णेर प्रणय विकार, राधिका है कृष्णेर प्रिय, कृष्ण का अपना उन्मत्त प्रेम से राधिका प्रकट होती है। स्वरूप शक्ति, ये भगवान कृष्ण की स्वरूप शक्ति है। अहलादिनी नाम यार, उसका नाम आनंद देने वाली शक्ति है अहलादिनी। अहलादिनी कराए कृष्ण आनंद आस्वादन, क्या काम है राधा का? कृष्ण को आनंद देना। और दूसरा काम क्या है ये सुन लीजिए, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राधिका का दूसरा काम क्या है? एक काम है कृष्ण को आनंद देना, दूसरा काम क्या है सुन लो। अहलादिनी द्वारा करे भक्तेर पोषण, जो एक बार कृष्ण के भक्त बन जाते हैं राधिका के द्वारा उन भक्तों का देखभाल करता है कृष्ण। जैसे संसार में जो लोग आते हैं उनकी देखभाल करती है माया दुर्गा माता, वो डंडा लेके उनके पीछे भागती रहती है, कहां गए क्या कर रहे हैं, जेल में डाल देती है। लेकिन जो भक्त बन जाते हैं उनका देखभाल राधिका करती है। महात्मा नस्तु माम पार्थ देवम प्रकृति माश्रतः, जो साधु संत महात्मा है वो राधिका के शरण में है, अंतरंग देवी शक्ति के शरण में होते हैं, वो माया के शरण में नहीं होते। संसार में जो ये दुर्गा जी हैं ये माया है, ये संसार की अधिष्ठात्री देखती है, इसके देवी है, इसका नाम भवानी है, ये मासी है हमारी, राधिका माता है और ये मासी है। मासी के घर में अभी हम आए हैं लेकिन माता के घर में जाना पड़ेगा, सारी उम्र मासी के घर में नहीं रह सकते, मासी का घर है ये। मासी को क्या बोलते हैं यहाँ आप? मौसी। तो ये मौसी के घर में मजा लो थोड़े दिन, लेकिन जाना माँ के पास पड़ेगा, माँ की गोद में दूध पियेंगे तभी सुखी होंगे। और कृष्ण नाम का अमृत राधिका पिला सकती है, इसलिए हरे शब्द राधा को संबोधन है हरे कृष्णा मंत्र में। और चैतन्य महाप्रभु राधा के भाव को और कांति को अंगीकार करके आए थे, तो इसलिए उन्होंने कृष्ण प्रेम का ही प्रसाद सबको दिया। राधिका के धन क्या है? राधिका का धन क्या है? कृष्ण। राधिका का धन है कृष्ण, और कृष्ण राधिका का धन है और भक्तों को वो बांट के देती है। करे भक्तेर पोषण, पोषण किसको बोलते हैं? जैसे छोटे बच्चे का माँ दूध पिलाती है, कितनी बार ध्यान रखती है कि बच्चे को ये खिलाओ वो करो, इसको बोलते हैं पोषण करना। पोषण मतलब उसका भरण पोषण, उसका देखभाल, खिलाना पिलाना उठाना सुलाना साफ करना सब पोषण में आता है। तो भक्त की सारी देखभाल कौन करता है? अहलादिनी शक्ति करे भक्तेर पोषण। और आगे क्या कहते हैं? ये कैसी शक्ति है? सच्चिदानंद पूर्ण कृष्णेर स्वरूप। कृष्ण सच्चिदानंद भगवान है, सब लोग कहें सच्चिदानंद भगवान की जय, लेकिन सच्चिदानंद भगवान कृष्ण है, कृष्ण का नाम नहीं लेंगे, सच्चिदानंद भगवान की, अरे कृष्ण भी बोलो ना, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, क्योंकि राधा रानी की कृपा नहीं है। और राधा रानी की कृपा केवल गौरंगा महाप्रभु से मिलती है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को लोग नहीं जानते हैं इसलिए कृष्ण को नहीं जानते हैं, और कृष्ण को नहीं जानते हैं इसलिए प्रेम और आनंद का सुख नहीं ले सकते हैं, केवल पूजा पाठ में अपना टाइम पूरा कर लेते हैं लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। कृष्ण भक्ति केवल गौरंगा महाप्रभु दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। अब आगे क्या लिखा है? अहलादीनी सार प्रेम। अहलादीन का सार का मतलब कंक्लूजन क्या है, इसेंस क्या है अहलादीन का प्रेम, प्रेम सार भाव, प्रेम का इसेंस भाव है। भावेर परम काष्टा नाम मा भाव, और भाव की जो लिमिट है अल्टीमेट उसको बोलते हैं महाभाव। द सेंस ऑफ अलादीन इंपोर्टेंस इज लव ऑफ गॉड, द सेंस ऑफ द लव ऑफ गॉड इज इमोशन कॉल्ड भाव, एंड द अल्टीमेट डेवलपमेंट ऑफ इमोशन इज कॉल्ड महाभाव। महाभाव स्वरूप श्री राधा ठाकुरानी, श्री राधिका महाभाव स्वरूप है, महाभाव स्वरूप है राधा रानी। सर्वगुण खानी, सारे गुण उसके अंदर हैं। खानी किसको बोलते हैं, खान माइन, माइन ऑफ ऑल द गुड क्वालिटीज, सर्वगुण खानी। कृष्ण कांता श्रोमणि, कांता कहते हैं प्रिय को, राधा कांत जो राधा को, जो राधा को का प्रिय है कृष्ण। श्रोमणि का मतलब सिर के ऊपर यहां मणि लगाते हैं ना आप, इसको शिरोमणि बोलते हैं, सबसे ऊपर जो यहां लगाते हैं ना एक सिर में मणि, यहां लगाते हैं आप लोग नहीं लगाते, एक इधर आप देखा है कभी राधिका को, कभी देखेंगे इधर एक बहुत सुंदर एक चंद्रकला लगी होती है, उसको शिरोमणि बोलते हैं, सिर के ऊपर। सिर के ऊपर का मतलब सबसे ऊपर स्थान जिसको दिया जाए। तो कृष्ण के प्रेमियों में सबसे ऊपर कौन है, कृष्ण कांता श्रोमणि, राधिका कृष्ण कांता है वो श्रोमणि है। अवतारी कृष्ण यही छे करे अवतार, अंशनी राधा है ते तीन गुणेर विस्तार। जैसे भगवान कृष्ण जब अवतार लेते हैं तो सारे अवतारी उसमें आते हैं ना, ऐसे जब राधिका अवतार लेके आती है कृष्ण के साथ में तो सारी शक्तियां उसके अंदर आती है। कौन कौन है, लक्ष्मी गण तहार वैभव विलासन रूप, महेशी गण वैभव और प्रकाश स्वरूप। जितनी भी लक्ष्मियां हैं वैकुंठ में वो राधा रानी का विस्तार है, और भगवान श्री कृष्ण की जो 16108 रानियां हैं द्वारका में वो राधा रानी का विस्तार है। और तीसरा, ब्रज देवी गण काय विहू रूप तार रसेर कारण, और जितनी गोपियां हैं वृंदावन में वो सब राधा का विस्तार है। जैसे कृष्ण से कई अवतार निकलते हैं ऐसे राधा जो भगवान की शक्ति है उससे सारी लक्ष्मियां, सारी भगवान की रानियां द्वारका की, अथवा कोई राम भक्त है तो सीता आदि, अगर नारायण की पूजा करता है तो लक्ष्मी आदि, सब राधा से निकलती, और सारी ब्रज की गोपियां। तहार मध्य ब्रज नाना भाव रस भेदे, कृष्ण एक कारा है आस्वादिक लीला आस्वादे। इन सब में वृंदावन की जो गोपियां हैं उनके अंदर जो राधा है वो कृष्ण को सबसे ज्यादा आनंद प्रदान करती है। वो कितना आनंद प्रदान करती है वो कृष्ण को पता नहीं लगता है। कृष्णमयी राधा कैसी है, कृष्णमयी कृष्ण यारे बाहित बाहरे भीतरे, उसके भीतर भी कृष्ण है और बाहर भी कृष्ण है। यहां तहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण स्पुरे, जहां भी राधा देखती है वहां कृष्ण ही दिखते हैं। एक लीला है गर्ग संहिता में, 100 साल के बाद, 100 साल की जुदाई के बाद, आफ्टर 100 ईयर सेपरेशन, राधा और कृष्ण का मिलन हुआ, और यह मिलन हुआ सिद्ध आश्रम बिंदु सरोवर में, सिद्ध आश्रम बिंदु सरोवर। बिंदु सरोवर वो स्थान है जहां कपिल देव का अवतार हुआ था, देवहूति मां और कर्दम मुनि के यहां, और वहां श्री कृष्ण अपने रानियों के साथ आए थे द्वारका से। सत्यभामा भी थी और रुक्मणी आदि थी, कालिंदी थी, लक्ष्मणा थी, ये जो आठ मुख्य रानियां और बाकी सब रानियों के साथ कृष्ण आए थे। राधा रानी का प्रभाव और वैभव देखकर सब रानियां चकित हो गई। कृष्ण को कहा ये कौन है, बोला ये वृषभानु दुलारी राधे, रुक्मणी आदि ने जाके उसका स्वागत किया, राधा का अपने साथ ले गई। तब राधा कहती है, देखिए चंद्रमा एक होता है, चकोर बहुत होते हैं उससे प्रेम करने वाले, ऐसे कृष्ण एक है उससे प्रेम करने वाले हम बहुत हैं। सबको ये आश्वासन दे रही है। और फिर रात को राधा रानी का बहुत बड़ा स्वागत किया, सम्मान किया। और कृष्ण जहाँ सो रहे थे, रुक्मणी जी कृष्ण के सोने के स्थान पे पलंग के आई और कृष्ण के चरणों को दबाने के लिए बैठी। तो कृष्ण जाग रहे थे, बोला अभी तक आप जाग क्यों रहे? बोला राधिका जाग रही है इसलिए मैं सो नहीं सकता। बोला वो क्यों जाग रही है? बोला वो ब्रज में गाय का दूध पिएगी तब सोएगी, आपने उन्होंने उसने दूध नहीं पिलाया है। तो भागती हुई रुक्मणी गई, दूध गर्म किया, सोने के कटोरे में डाला, जल्दी जल्दी जाके राधिका को देखा जाग रही है, दूध दे दिया सोने के कटोरे में। और राधिका तो कृष्ण प्रेम में मतवाली थी, दूध पी लिया। रुक्मणी जल्दी आई वापस, कृष्ण के चरणों को हाथ लगाती है तो चरणों में फफूंद है, जले हुए हैं चरण। आपको क्या हो गया नाथ, आप कहीं बाहर नहीं गए, आपके चरण जल कैसे गए? बोला रुक्मणी तुमने बहुत गर्म दूध पिलाया राधिका को, राधिका के हृदय में मेरे चरण है, वो गर्म दूध उसके ऊपर पड़ा इसलिए मेरे चरण जल गए। राधा के कृष्ण अंदर भी है और बाहर भी है, ये लिखा है। इसको बोलते हैं गर्म दूध की लीला राधा कृष्ण की। कृष्ण के पांव जल गए क्योंकि राधा के को गर्म दूध। रुक्मणी का राधा और का प्रेम हमारे समझ से बहुत ऊपर है। कृष्ण राधा के अंदर भी है बाहर भी है। राधिका जब कृष्ण से मिलती है तब बिलू साड़ी पहनती है, दीपा बिलू पहन के आई है, बिलू साड़ी पहनती है जब राधा कृष्ण से मिलती है। क्यों? कृष्ण का बिलू रंग है उसको अच्छा लगता है, सांवला कृष्ण। और कृष्ण से जब जुदा होती है राधा तब सेफरान कलर की साड़ी पहनती है, जुदाई का रंग सेफरान का है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने राधा रानी के भाव को अंगीकार किया और राधा रानी की जुदाई के भाव को अंगीकार किया, इसलिए सन्यास लेके सेफरान को कपड़ा पहना। ये राधा रानी का जुदाई का भाव है, विप्रलंब भाव है। ये बहुत ऊपर की बातें हैं लेकिन आज इतना ही आपको बताते हैं। इससे इतने इस आनंद को देखकर, श्री कृष्ण राधा के इस प्रेम को देखकर इतने मतवाले हो गए कि उन्होंने कहा कि इतना राधा को सुख क्या मिलता है मुझसे प्रेम करने में, अथवा मेरी सुंदरता ऐसी कौन सी है राधा को मुग्ध कर देती है और क्या सुख मिलता है राधा को। ये तीन इच्छाएं कृष्ण की कृष्ण अवतार में पूरी नहीं हुई, इसलिए राधा बनकर राधा के भाव को और राधा के रंग को धारण करके श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बनकर आ गए। और जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बनकर आए तो 524 साल पहले नवद्वीप में जगन्नाथ मिश्रा, उपेंद्र मिश्रा का बेटा, पांच नंबर बेटा, सात पुत्र थे, पांचवें नंबर का नाम था जगन्नाथ मिश्रा जो नंद बाबा थे, और सची माता नीलांबर चक्रवर्ती बहुत बड़े मान पंडित की पुत्री, इन दोनों के घर में फाल्गुन पूर्णिमा 1407 साकेरा में पूर्णिमा के दिन, जो आज का दिन है जिसको वैसे भारतवर्ष में होली के नाम से मनाया जाता है और होली में रंग डाल के आदमी की शक्ल बदल देते हैं। अब तो कृष्ण ने कहा कि जब रंग बदल के ही जाना है तो होली के दिन जाएंगे, अब सांवले कृष्ण गोरे होकर आ गए। तो आज के दिन शायन काल को चंद्र ग्रहण था, ल्यूनर इक्लिप्स था, चंद्र ग्रहण था। उस चंद्र ग्रहण में सब लोग हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरे कृष्ण गा रहे थे। और उस वक्त 13 महीने सची माता के उदर में रहने के बाद चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और उसका नाम नीलांबर चक्रवर्ती ने रखा विश्वंबर, विश्वंबर पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाले। निमाई नाम रखा, नीम के पेड़ के नीचे जन्म लिया और स्त्रियां कहती थी बहुत सुंदर है, गोरा है, गौर सुंदर। तो इन तीन नामों से वहां इनका बहुत ज्यादा प्रेम से 24 साल तक ये नाम रहे। 24 साल में संन्यास लिया तो नाम हो गया श्री कृष्ण चैतन्य। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ही विश्वंबर है, वही गौर सुंदर है, वही निमाई है, वो गौर सुंदर कृष्ण प्रेम देने के लिए आए हैं। इसलिए भाग्यशाली आप हो कि श्रील प्रभुपाद की कृपा से मॉरिशस में बैठे हुए राधा कृष्ण के वृंदावन का प्रेम आपको यहां मिल रहा है। जो प्रेम राधा कृष्ण की सेवा का वृंदावन में ब्रजवासियों को मिलता है, वो प्रभुपाद की कृपा से, परंपरा की कृपा से आप अपने देश में बैठे हुए गौर निताय के मंदिर में, रोजबेल में बैठे हुए आपकी ये जो सेवा आप कर रहे हैं, ये सेवा गुरु परंपरा के द्वारा, गोस्वामी के द्वारा, वृंदावन में अंदर महाप्रभु के द्वारा श्री राधा और कृष्ण के चरणों में समर्पित हो रही है, ये आप बहुत बड़े भाग्यशाली है। बहुत कम लोग हैं जो चेतन महाप्रभु की कृपा के पात्र होते हैं, जो हो जाते हैं वो निश्चित रूप से राधा कृष्ण के अनन्य भक्त बनते हैं, उनका जन्म सफल होता है। इन शब्दों के साथ गौर पूर्णिमा महोत्सव का रोजबेल के सत्संग को समाप्त करते हैं। आप सब भाग्यशाली हो, कीर्तन कीजिए, अभिषेक कीजिए, गाइए कृष्ण कथा, सुनिए कृष्ण कीर्तन कीजिए और कृष्ण की वर्शिप कीजिए। तीन ही काम महाप्रभु ने सिखाए हैं, तीन काम अद्वैत आचार्य के घर में हुआ करते थे महाप्रभु से के अवतार से पहले, वर्शिप ऑफ कृष्ण, कृष्ण कथा एंड चैंटिंग द होली नेम ऑफ कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इफ यू डू दीज थ्री थिंग्स, तीन काम अगर करोगे जीवन में, इस्कान प्रभुपाद कहा कि इस्कान में ये तीन ही काम है, कृष्ण की पूजा, कृष्ण की कथा और कृष्ण का कीर्तन। ये तीन काम करेंगे, वी कैन स्प्रेड ऑल ओवर द प्लैनेट। मैनेजमेंट से प्रचार नहीं होगा, बड़े मंदिर बनाने से प्रचार नहीं होगा, ये तीन काम करेंगे तो प्रचार होगा। ओनली इफ वी डू दीज थ्री थिंग्स देन वी कैन प्रीच, कृष्ण वर्शिप, कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन। Then we can give this love of Krishna which Mahaprabhu gave without consideration of the patra. Papi hai, tapi hai, nashai hai, charsi hai, bhang pita hai, sharab pita hai, koi baat nahi, aao Hare Krishna japo. Mahaprabhu to keval jagai madhai do sharabiyon ko bhakt banaya tha, lekin Shri Prabhupad ne hajaron hippiyon ko bhagwan ka bhakt bana diya. Ye chaitanya Mahaprabhu ki kripa ka prasad hai. तो आप भी अगर चाहते हो सुख लेना जीवन में, तो हरे कृष्ण जपो और सुखी बनो। कहीं भी नहीं बोला है प्रभुपाद ने कि चार नियम पालन करो, चार नियम तोड़ो और सुखी हो जाओ। ब्रेक द फोर रूल्स एंड बिकम हैप्पी, होल वर्ल्ड इज बिकमिंग हैप्पी बाय ब्रेकिंग फोर रूल्स। नशा करो खुश हो जाओ, मांस खाओ खुश हो जाओ, पर स्त्री संग करके खुश हो जाओ, जुआ में खुश हो जाओ, दिस इज व्हाट द होल वर्ल्ड इज डूइंग। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, हरे कृष्णा जपो और सुखी हो जाओ, छोड़ दो ये पाप कर्म, तभी चेतन महाप्रभु की कृपा का पता लगेगा, तभी आपका जीवन बड़ा आनंदमय हो जाएगा। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की, गौरंग महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।